अमृत कलश तो देवता लेकर चले गए। विष जिंदगी का जो बचा सारा मिला हमें। ये आग, ये धुआं, ये धुंधलका है सामने। इस हाल में तो हर कोई हारा मिला मुझे। प्रसिद्ध कवि हनुमंत नायडू जी की ये कविता है। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। जीवन दुखालय है और इसमें वही इंसान आंतरिक सुख और संतुष्टि का अनुभव कर सकता है जिसके अंदर आत्म संतुष्टि और परमार्थ का भाव होगा। क्योंकि अपने लिए और अपनों के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के दर्द को अपनाना, उनका सहारा बनने की कोशिश भी करना बहुत बड़ा सुख और परमानंद देता है। अब ये अलग बात है कि हमारी सोच और नजरिया क्या है। इस प्रकार के कार्य करने के लिए एक अलग जज्बा, एक जुनून होना चाहिए। इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जब हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की सोचते हैं तो वहां स्वार्थ नहीं होता, बस एक जज्बा होता है। ये कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। इस कोरोना काल में कुछ लोग निस्वार्थ भाव से अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो कुछ अपनी वाक्पटुता के द्वारा, तो कुछ तन मन और धन से जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, मास्क और आवश्यकता की अन्य वस्तुएं उपलब्ध करा के अपने समाज और देश के प्रति दायित्व को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के चेहरे आप गौर से देखिए, इनसे बात करके देखिए, इनकी सादगी और इनके अंदर जो आत्मसंतुष्टि है वो सामने वाले व्यक्ति के जीवन को भी संतुष्टि और खुशहाली से भर देती है और जिंदगी का सारा विष इस परमार्थ सेवा से अमृत में बदल जाता है। कहते हैं ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान लखनऊ हाई कोर्ट में अपर शासकीय अधिवक्ता राम उग्रह शुक्ला जी से बात करके, उनसे मिलकर यही लगता है कि वे कितनी सरलता से एक महान उद्देश्य को लेकर चलते जा रहे हैं। चुभन के कार्यक्रम में आप पहले भी आ चुके हैं और उनकी लगन और मेहनत को देखकर शब्द भी कम हो जाते हैं। जिस तन्मयता से आपने कोरोना की पहली लहर में लोगों की मदद को हाथ आगे बढ़ाए, उसी तरह इस बार दूसरी लहर में भी आपने लोगों के बीच जाकर मदद की। इस बार जब दूसरी लहर आई तो उसका रूप इतना भयंकर था कि लोग घर से निकलने में भी डरने लगे, लेकिन शुक्ला जी ने ऐसे समय में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए जरूरतमंदों की मदद को ही अपना परम कर्तव्य समझा। तो दोस्तों, राम उग्रह शुक्ला जी को अब अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं और उनसे ही बातचीत करते हैं। जी नमस्ते सर।
नमस्ते
सर, आपका अभिनंदन है।
जी जी, थैंक यू।
कैसे हैं सर आप?
सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास हैं। आप कैसे हैं?
बस हम लोग भी बढ़िया ही हैं सर। अब ये कोरोना की दूसरी लहर ने तो थोड़ा सबको डरा दिया, लेकिन अब बस कुछ कम होता जाए, ऐसे यही हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
जी,
और
जी,
जैसा
जी।
कि सर हम लोग जानते ही हैं कि कोरोना महामारी की जब शुरुआत हुई थी और लॉकडाउन लगा था और लोग अपने अपने घरों की तरफ भूखे प्यासे और पैदल जा रहे थे, तो उस दौरान आपने 125 दिनों तक ऐसे जरूरतमंद लोगों को खाना पानी और सैनिटाइजर, मास्क, दवा, ये सब जरूरी चीजें देकर, और उनका आपने बहुत उनका सोचा और उनके लिए किया। और अभी जब ये अप्रैल से दूसरा लॉकडाउन का दौर आया और कोरोना की दूसरी लहर आई, तब भी आपको हम देख रहे हैं कि उसी तत्परता से आप लगे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, इतना जज्बा आप कहाँ से लाते हैं? क्योंकि सर एक चीज है कि अब की जो दूसरी लहर आई कोरोना की, ये इतनी भयंकर थी कि लोग घरों से भी नहीं निकलना चाह रहे थे। तो ऐसे में
जी
आपने निडरता से सब कुछ किया, अपने अनुभव कुछ हमारे साथ साझा करें।
जी जी ये मुझे आभास हो गया था फरवरी में, जब कोरोना बढ़ने लगा था धीरे धीरे, तो मैं तभी से मैंने निर्णय लिया था कि अब की बड़ा देखिए कैसे क्या होता है। फिर 27 मार्च को हमने वैक्सीन लगवाया फर्स्ट डोज, और 27 मार्च को फर्स्ट डोज लगवा करके फिर हमने शुरू कर दिया था। तो उसी दिन, क्योंकि हमें ये लगा कि होली आने वाला है, होली में हमारा युवा जो है फिर वही बेवकूफी करेगा, तो मैं 27 मार्च को ही कुछ लोगों को मास्क बांट करके, आपने देखा होगा न्यूज में आया भी था, हमने कहा भाई आगाह कर रहा हूँ होली पे मनाइए, लेकिन मतलब मास्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि अगर अब की आएगा सेकंड आएगा तो उसके बचने के लिए ये मैंने किया था जी। और उसके बाद में जब ये लॉकडाउन शुरू हो गया तो अब की इतना भयंकर था, इतना भयंकर था कि लोग निकल नहीं रहे थे कुछ करने के लिए, और हम भी जो है बस थोड़ा बहुत लोग कर देते थे, लेकिन जो परसाल मैंने 26 मार्च 2020 से स्टार्ट किया था और 125 दिन कंटिन्यू किया था, क्योंकि फेसबुक पे मैं परसाल 26 मार्च को ही डाल दिया था कि मैं 10 लोगों का रोज खाना दूंगा, तो उन लोगों के फोन आना शुरू हो गए, क्योंकि मैं वहां पहुंचता था चिन्हित करके जहां कोई नहीं पहुंच सकता है, तो उन लोगों के जब फोन आना शुरू कर दिया और उनके पीड़ा को मैं नहीं बर्दाश्त किया, तो मैंने कहा छोड़िए अब किसी न किसी को निकलना ही पड़ेगा, आगे आना ही पड़ेगा, मैं आगे आ करके और शुरू किया और आह्वान भी किया सबको, लेकिन उसके बावजूद ही लोग अपने अपने हिसाब से किए होंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो किया वो मैंने फिर शुरू कर दिया, और अब की मेरा 75 डेज मतलब 10 तारीख तक अभी तक मैं करता रहा
जी,
और ये चीज जज्बा जो है बचपन से ही था, मुझे बचपन से ही मेरी सेवा की भाव थी, और ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में ही, लॉकडाउन में थोड़ा पॉपुलर ज्यादा हुए, उससे पहले भी मैं करता हूँ, आज भी मैं मेरी गाड़ी में पुराने कपड़े मास्क पीपी किट ये सब रखा रहता है, पार्ले जी बिस्कुट रहता रहता है, मैं पैसा नहीं देता हूँ किसी को, कोई बच्चा अगर भिखारी या वो मांगता है तो उसको बिस्कुट दे देता हूँ, या कोई कहता है खाना खिला दो तो उसको खाना खिला दूंगा, लेकिन पैसा नहीं देता हूँ जी।
जी आपका जो भी हम देखते हैं आपके चैनल्स पर जो भी दिखाया जाता है, तो उससे ये लगता है कि आप दिल से कनेक्ट होते हैं। एक होता है कि हम जाकर और सिर्फ अपना प्रचार करने को, या चलिए कि बस एक अपना फर्ज समझकर कर दिया, वो चीज नहीं। मैंने देखा कि आप जाते हैं, बच्चे आपके आगे पीछे होते हैं, आप उनको खाने को टॉफी बिस्किट सब देते हैं। एक चीज मैं कहूंगी सर कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए एक अलग जज्बा, एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता, और वो आप में है, तभी आपको आज इस सेवा कार्य का सौभाग्य मिला, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि ऐसा करने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता। हम लोग सब सोचते रह जाते हैं, लेकिन वास्तव में घर से निकलना भी जिन हालातों में मुश्किल था, आपने इतना निकल कर और ऐसे ऐसे इलाकों में जाकर सब कुछ किया। तो पहला वाला जो कोरोना की लहर आई तब, और दूसरी लहर जो अब की आई, इसमें आपने क्या फर्क क्या महसूस किया, क्या अंतर था?
इसमें बहुत फर्क था, इसमें जो दर्द था लोगों का, निकल नहीं रहे थे, इतने सहमे हुए थे कि बहुत से लोग हमारे परिचित थे, उनसे कहा आप क्यों नहीं निकल रहे हो, कहने भाई साहब बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, पड़ताल बहुत किया, लेकिन मैंने इसमें निकला, और ये मेरा उद्देश्य ये नहीं है, पैसे वाले इस देश में बहुत है और दानवीर भी बहुत है, पैसा बहुत लोगों पास है, पैसा खर्च भी करते हैं, एनजीओ देते सब होते, उस पर मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब ऊपर वाला, उसको हम जिस रूप में माने, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनको भगवान मानता हूँ, किसी रूप में हर व्यक्ति मानने वाला, जब तक वो ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक कोई किसी का हेल्प नहीं कर पाएगा, मानव सेवा नहीं कर पाएगा, ये तो मान लिए, और जब वो चाहेगा तो वही रक्षा करेगा, मैं उसी को अपना साक्षी बनाकर मान करके, लोग नहीं निकल रहे थे, हमने कहा हम निकल रहे हनुमान जी महाराज जी आपके, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ भोलेनाथ का, हमने कहा मैं आपको स्मरण करके निकल रहा हूँ, बच्चे जरूर आएंगे मुझे टच करेंगे, आदमी जरूर मुझे टच करेंगे भीड़ में, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा, आप ही देखिएगा जो कुछ देखना है, आप देखे होंगे मैं अभी जल्दी गया था मेडिकल कॉलेज के पीछे एक दिन पहले
जी,
बड़ी अच्छी अब दर्द की घटना है, आंसू आ जाते हैं, तो उन लोगों से पूछा, हमने कहा आप लोग ये बच्चों को कपड़े नहीं दे, उन्होंने कहा भाई साहब मैं जाके कहीं लंगर से कहीं से खाना व्यवस्था एक टाइम तो कर पाती हूँ, कपड़े कहाँ से हैं, जिनके यहाँ काम करते थे उन लोगों ने मना कर दिया, अगली बार ऐसा नहीं हुआ था, अब की सब लोगों ने मना कर दिया कि घर में काम करने नहीं आना है, हम सब कर लेंगे, अब मेरे पास भुखमरी के अलावा कुछ नहीं है। तब मैं दूसरे दिन वहां पे गया तो देखा कैसे कैसे रहते, और अभी एक लास्ट लास्ट मंगल को जब मैं डालीगंज पुल के नीचे गया तो जब पैकेट दे रहा था खाने का तो एक माँ बुढ़िया जो है वो चल नहीं पा रही, उसने कहा बेटा दो पैकेट ले लेना तो शाम को एक एक पूड़ी और हम लोग खा लेंगे और सुबह नाश्ता भी हो जाएगा।
कितना दर्द,
मतलब इतना वो था उसको, हालांकि बीबीसी ने अपना खबर भी दिया, उसको लिखा भी कि ममता की माँ ने मतलब नहीं रोक पाई। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैं चिन्ह, जिनसे क्या है आज हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमें विधायक बनना है, ना मुझे अब हमारी ऐसी एज हो गई कि ना मुझे अब कोई राजनीतिक पार्टी टिकट ही देगा और ना मेरे पास टिकट लड़ने के लिए पैसा ही है। हमारी जो अपनी इनकम है जितना मैं कमाता हूँ उसका 30-35% पब्लिक में खर्च कर देता हूँ और कोई इच्छा भी उसकी नहीं है, और इसलिए करता हूँ कि एक काम कम से कम जीवन में इतनी ईमानदारी से मानव की सेवा कर दूं कि अगर ऊपर जाऊं तो चित्रगुप्त कम से कम ये तो कहे कि हाँ, ये तो उनसे मैं कह सकूं कि भाई एक काम तो मैंने बड़ी ईमानदारी से किया था, जब आप लोगों ने महामारी देश में दिया पूरे विश्व में दिया तो उस टाइम में इतना तो किया था, इसमें तो कोई मिलावट नहीं, तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है लोगों की सेवा करना, असहाय का, गरीब का, निरीह का, जिनका जो परेशान है पीड़ित है उनकी सेवा करना, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और किसी भूखे आदमी को खाना खिला दीजिए अपना मत खाइए तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है, इसको मैं मानता हूँ और सारे धर्म में इसको मानते हैं। जी
जी बहुत ऊंचे विचार है सर, और आप इतने बड़े कार्य को एकदम इतनी सादगी से और सरलता से करते हैं कि लगता ही नहीं कि कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब सोचो और आपका हम लोग मीडिया में देखते हैं तो, और आपसे बात भी करके पता चलता है कि आप कितना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि
आज हमारे एक, अब हाँ मैं इसमें रोक रहा हूँ, आज हमारे एक मित्र SDO हैं गोंडा में, साथ पढ़ते थे, उन्होंने कहा शुक्ला जी बताइए इतना आप खर्च कर गए हैं, हम तो वीडियो देख देख करके, तो ये पैसे जो है कहाँ से आए? तो हमने कहा ये पैसे मुझे भी नहीं पता कहाँ से आए, लेकिन मैंने किसी से लिया नहीं हूँ, अपनी कमाई का, अपना जो सेविंग रखे थे, अपने पास जो बच्चे के लिए मरीज का या आगे पढ़ाई कर रहे थे, मैंने ये सोचा ये मुझे अभी जरूरत नहीं खर्च करने का, अभी इसको खर्च करो, क्योंकि कोरोना में मैं रोज टीवी में देख देख के ये परेशान था। अभी राशन वाला हमसे कह रहा था कि जितना आप खर्च किए इतने में तो आपका मकान बन जाता, हमने कहा मकान तो बन जाता लेकिन कोरोना हो जाता तो ऊपर भी तो चले जाते भाई, कि इनकी सेवा कौन करेगा, डॉक्टर भी तो इलाज कर रहे हैं लोगों को जाके कोरोना में, हमारे पुलिस भी तो रोड पे उतर के सेवा कर रहे हैं लोगों की, बहुत से NGO भी सेवा कर रहे हैं, तो उसमें हम भी सेवा कर रहे हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। और हम तो जो कर जाते हैं हम समझते हैं हमने कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ किए नहीं, हम तो एक माध्यम है, करने वाला तो ऊपर वाला है। वो इतना मैं जानता हूँ कि वो सुपात्र लोगों से सही मानव की सेवा कराता है। हमने, आपने देखा होगा, हम उन जगह पे गया हूँ जहां न प्रशासन पहुंच सकता था, ना वहां पे कोई NGO पहुंचा है, ना कहीं वो पहुंचा है, ना वहां से मेरा कोई वो था कि ये प्लेटफार्म है इससे हम हाईलाइट होंगे। हाईलाइट तो हम अपने आप, भगवान अपने आप कर देता, जब अच्छे आप काम करते रहेंगे, एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, जब बहुत दिन हो जाएगा, लगातार हो जाएगा तो उसको कोई रोक नहीं पाता, तो ऊपर वाला ही जब चाहेगा तब कोई कुछ कर जाता। मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं एक माध्यम हूँ बस।
जी बिल्कुल सर, ये तो आपका बहुत, क्या कहा जाए कि आप बहुत विनम्र होकर बोल रहे हैं ना, तो इतना इससे, इसका शायद 10% करके भी लोग कहते हैं कि हमने बहुत किया, लेकिन होना यही चाहिए, कहते हैं ना कि दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं को ना पता चले, लेकिन ये चीज होती कम है, पर आप इतना कर रहे हैं और ये तो अब मीडिया में इतना आ गया है और सब जानने लग गए, आपको तो लखनऊ का सोनू सूद कहा जाने लग गया है सर, लेकिन
नहीं,
मैं
नहीं,
कि नहीं आप
नहीं,
इतना
नहीं,
व्यक्तित्व है, किसी से कोई तुलना
नहीं नहीं
नहीं
नहीं नहीं वो कहाँ, हम कहाँ, हम तो एक बहुत ही, समझ लीजिए लखनऊ में मैं आया था 1978 वगैरह में, तो हवाई चप्पल, पैजामा, बूसट एक थी, 8वां पास था, अब आप समझ लीजिए मैंने 15-15, 16-16 घंटा काम करके प्राइवेट में,
जी
लीला सिनेमा में बुकिंग क्लर्क था, समझ लीजिए 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक टिकट ही बांटना रहता था, और उसके बाद में पढ़ाई करता था, यूनिवर्सिटी में क्लास अटेंड कराता था, बीच में लंच होता था या छुट्टी होता था 1 घंटे का, तो मैं उस पीड़ा को समझ रहा हूँ। जब जो व्यक्ति पैसा बहुत वाले पैसे वाले हैं, लेकिन पीड़ा को जब तक नहीं समझोगे, हम भूखों लखनऊ में रहे हैं, मैं एक एक रोटी खा करके गुजारा किया हूँ, पढ़ाई किया हूँ, तो मुझे वो दर्द, मुझे वो एहसास पता है, मुझे वो चीज पता है कहाँ पे है। आपने देखा होगा कभी हनुमान मंदिर में, यहाँ पे मनकामेश्वर मंदिर या कहीं ऐसे स्थान पे मैं पूड़ी उड़ी नहीं बांटने बहुत कम गया हूँ, क्योंकि वहां तो लोग रोज आते हैं पब्लिसिटी के लिए या क्या आते हैं, उनकी अपनी तंकी, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं उन जगहों पे चिन्हित करके गया हूँ। कल भी मंगल है, कल भी मैं जाके पूड़ी पैकेट बांटूंगा, पर साल चारों मंगल बांटा था, तो चारों मंगल बांटेंगे हनुमान जी का। अब सब अब मंगल वाले में जो जो खाते हैं कहते हैं बहुत टेस्टी हो जाता है, हमने कहा टेस्टी इसलिए हो जाता है पहले हनुमान जी को प्रसाद चढ़ जाता है और भोलेनाथ को, उसके बाद वितरण करते हैं। तो ये वितरण मैं कर रहा हूँ, ये प्रसाद का वितरण कर रहा हूँ, कि ना कि इसको आप वो समझे कि सबको मैं बांट रहा हूँ।
जी
तो ये चीजें मैं आ रही है, प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। अब ये नहीं है कि 75 दिन हो गया तो उसके बाद मैं ना करूं, मैं करता रहता हूं इस चीज को, और ऊपर वाला कराता है, मैं नहीं करता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई वो चीज नहीं है कि मुझे कोई अब कुछ दे देगा, और देगा तभी जब ऊपर वाला चाहेगा। आप यहाँ थोड़े थोड़ा लोग करते हैं, मैंने देखा राजनीतिक पार्टी के लोग और बड़े बड़े लोग, बड़ा उनको बुला बुला के सम्मान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमको तो बहुत लोगों ने बुलाया, मैं गया ही नहीं। मैंने कहा हमने कहा राजनीति करनी नहीं है और हमें क्या लेना देना, हम तो सेवा कर रहे हैं भगवान की कृपा से, भगवान चाह रहा था मैं कर रहा हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। तो ये चीज ये है, अब सोच आदमी की होनी चाहिए कि कौन किस व्यक्ति का कौन क्या सोच है, कुछ काम ऐसे होने चाहिए। मेरा यही कहना है लोगों से कि कुछ काम जीवन में ऐसा करो कि जिसमें तुम्हारा स्वार्थ ना छुपा हो, निस्वार्थ हो और निष्काम हो, और उसके लिए कोई अपेक्षा मत करो। मैंने कहीं अपना बायोडाटा नहीं दिया होगा किसी पार्टी में, कहीं किसी से मैंने नहीं कहा हो, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया हो कि मतलब आज तो मीडिया में हमारी जो बोलते हैं उसको आ भी जाता है कि हमको हमने ये किया, हमको ये चीज नहीं मिला, हम उस मिलने के लिए नहीं किया, हमने ऊपर वाले ने हमसे कराया है मेरे हाथ से, और मैंने उस चीज को किया है, और ऊपर वाले ने हमारी कमाई दी बढ़ाई है उसी से मैंने किया है, हमने तो कुछ नहीं किया। और जब मैंने कुछ किया जब मैंने कुछ किया ही नहीं, तो हम किसी से अपेक्षा क्यों करें कि हमको इसके बदले में कुछ मिले।
जी जी
वो तो जो करते हैं वो अपेक्षा करते हैं, उनके लिए होगा, मेरे लिए नहीं हो, बाकी हमें किसी से लेना देना नहीं, अपने अपने हिसाब से सब लोग सबकी सेवा कर रहे होंगे।
जी बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, निष्काम भाव से किया गया कर्म ही असली कर्म है, और इसीलिए लोग आपको पूछते हैं ना, उनको शक रहता है कि कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि इसलिए कि कोई इस भाव के साथ कर नहीं पाता। लेकिन ये तो वास्तविकता है कि आपको कहीं से भी कुछ मदद नहीं और आप अपने बूते पर सब कर रहे हैं, तो लेकिन अपनी अपनी सैलरी से पैसे बचाकर या बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए जो आपने सेविंग की हुई है उसको करके कितने लोग करते हैं, बहुत विरले ही करते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि आप एकदम नीचे से ऊपर उठे हैं, और मतलब धरातल स्तर पर बहुत लोग रहते हैं और ऊंचे उठते हैं, लेकिन कितने लोग दूसरों की पीड़ा समझ पाते हैं ये भी आप जानते हैं, तो ये सारे भाव आपके मन में है, तो यही चीज आपको सबसे अलग बनाती है।
बहुत लोग शक करते हैं। अब जैसे हमारे भाई है, उनका फैक्ट्री है, वो 30 लाख रुपए का हमको, अगर उसका हमने जोड़ा था हिसाब, 30 लाख रुपए का मेरे भाई है मौसी, अपने फैक्ट्री मौसी भाई लड़के हैं, भिजवाए थे मास्क और पीपी किट, उसको मैंने वितरण किया।
अच्छा,
अब वही लोगों को लगता है कि मतलब, और बाकी ये जो खाने के पैकेट, राशन पैकेट और ये जो पैसे, ये सब तो मैं अपने पास दे दिया हूँ। फिर भी उनको मैं ये कहा हूँ कि भैया इसकी जो कॉस्ट है वो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे,
जी।
जो कॉस्ट आपकी लगी वो मैं दे दूंगा
जी,
और दे दूंगा निश्चित है उसको।
बिल्कुल
जी
ये बात तो है। आपने मास्क भी बहुत बांटे, N95 भी मेडिकल कॉलेज में जा जाकर, ये सब हमें पता है सर। और कितने महंगे थे मास्क उस टाइम पर, और किस तरह से मिलते थे जब
देखिए,
शुरू में।
हमारे हमारा शास्त्र कहता है,
जी
भगवान कहते हैं कि जो चीज आपको अच्छी लगे, जो चीज आपको बहुत अच्छी लगे, वही अपेक्षा करो कि वही आप दूसरे प्राणी को भी दो, क्योंकि आपका अगर आप भी इंसान हो तो वो भी इंसान है। तो आपने देखा होगा, चाहे वो भिखारियों का पैकेट दिया हूं या चाहे अच्छे लोग दिया हूं, लेकिन उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, जो मुझे अच्छा लगा वही बनवाया कह करके, और वही चीज हमने लोगों को वितरण किया, तभी भगवान प्रसन्न होंगे, अन्यथा नहीं प्रसन्न
बिल्कुल
होंगे।
ठीक कहा आपने।
हाँ, हम चाहते तो 5 रुपया 6 रुपया वाला मास्क दे देते। हमारा N95 DRDO सिट्रा लैब से अप्रूव्ड है और बाहर
जी
एक्सपोर्ट होता है। 5 लेयर का मास्क है
जी जी
और PPE किट भी 97 GCM है। ये चीजें मैंने डॉक्टरों को दिया, ये चीजें मैंने रिक्शे वालों को भी दिया है, उन सबको दिया है कि कोरोना से उसको बचत हो।
जी
और ऐसा नहीं कि किसी को मैं छोड़ा, सबको छोड़ा। अगर कोई मीडिया के जगत में भी कहा कि हमको जरूरत है, तो आपने देखा होगा परसाल प्रेस क्लब की भी सीन, वहां भी हमने उनको एम्प्लाइज को दिया। मतलब जिसने मुझसे कह दिया, मैंने उससे कह दिया भाई आज तो नहीं कल मैं दूंगा, और मैं वहां पहुंचाया हूँ जो
जी
मेरी अपनी सामर्थ्य है। मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूँ। बाकी लोग एक चीज जरूर कहूंगा कि राम राज की बात करते हैं लोग, राम राज कैसे आए, राम राज ऐसे आएगा। आप दो लोगों का खाना आप देखिए, आपके अगल बगल पड़ोसी भूखा ना रहे, आप उसको खाना देता शुरू कर दिए, राम राज अपने आप आ जाएगा,
बिल्कुल
लेकिन फेंक देंगे खाना, आपको खाना आप वेस्ट कर देंगे, फेंक देंगे उसको, चाहे कोई बुरा लगे किसी को, लेकिन वो बगल वाले पड़ोसी को देना नहीं पसंद करेंगे, या जो सुबह आते हैं भिखारी भीख मांगने आते हैं उनको नहीं देंगे कि उनको एक कप चाय आप पिला दो। हम तो उनको भी एक कप चाय पिला देते हैं दे करके, उसमें कुल्हड़ उल्हड़ में कि भैया पी
जी
लो, अगर चाय पीनी है खाना पीना, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे, आप खा पी लो जो चाहो हम खिला देंगे आपको। हम तो यहां तक मेरे अंदर की भावना है कि अगर भिखारी कहे कि मैं आपके डाइनिंग टेबल बैठ के खाना खाऊंगा तो मैं उसको खिला दूंगा, घर अगर घर पे आया है तो, मुझे उसमें कोई भेदभाव नहीं। वो अपने कर्मों के अनुसार से अपना पाप भोग रहा है, हम
जी
अपने कर्मों के अनुसार से भगवान की कृपा से लोगों की सेवा कर रहे हैं।
जी बिल्कुल
जी, और ये सब
बहुत
मेरी माँ का आशीर्वाद है। अभी 100 साल की हुई है इस साल, उनका बर्थडे भी मैंने मनाया था।
कैसी हैं वो सर,
वो अभी चलती फिरती, अभी वो मतलब काम करती हैं, ऐसा
पिछले
नहीं है।
साल तो जब आप आए थे हमारे कार्यक्रम में तब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी,
बहुत
अब
बहुत 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 थी,
जी
लेकिन सब ठीक हो गया, सब अच्छा हो गया। वो उनको मैं प्रसन्न रखता हूँ हमेशा। बहुत कम लोग होंगे, मैंने उनको फ्लाइट से भी वो घूम चुकी है अभी, मतलब जब 99 साल की थी तब, इस साल तो सौ
जी
साल की हुई। उनकी बात हमारे घर में कोई काट नहीं सकता है। जी
अच्छा, उन्हीं का आशीर्वाद है सर आप लोगों के ऊपर।
बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि आज कल लोग जो अपने माँ बाप को वैसे बात करते हैं, वो हमसे सीखें कि देखें कि कैसे, मतलब एक माँ का बिना, माँ का अगर कहीं आपको श्राप लग गया, अब माँ तो आप समझिए आप जीवन में सुखी नहीं रहेंगे, चाहे जितना पैसा आप कमा लें, चाहे
बिल्कुल
जितना भौतिक सुख प्राप्त कर लें, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए
जी सर
मेरी इतनी है लोगों से विनती कि कुछ भी हो, अपनी माँ को कम से कम कुछ दे नहीं सकते हो, लेकिन प्यार से उनसे बोलते रहो भाई
बहुत ठीक
उनको।
है
हाँ, उनको कुछ कहो मत, उनका बर्दाश्त करो, वो भी तुम्हारा बर्दाश्त वर्तमान में बहुत की है।
बिल्कुल सर
जी भाई,
बहुत ठीक, आप बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और ये माँ के लिए जो आपने कहा ये तो बहुत
मैं तो इतना कहता हूं कि आप ये सोचिए कि आप जिस माँ के पेट में 9 महीना थे, वो माँ ने क्या खाया, कम खाया, लेकिन आज जो भी खाया, जो भी उसके पेट में गया, वो चारा आपको मिलता रहा। अगर वो
बिल्कुल
अच्छा खाना उस खाती नहीं, तो अच्छा खाना आपको मिलता रहा। ये
जी
चीज क्यों नहीं सोचते हो कि जो माँ ने आपको 9 महीना पेट में पाला, बाहर निकले आपकी परवरिश की हर चीज की, आज आपको पढ़ा लिखा के इतने होते पढ़ा है, और मैं देखता हूँ टीवी में अनाथालय में देखता हूँ, देवकी नंदन जो है उनका मैं देखता हूँ, सबको वो बनाए पड़े हैं, उनसे सीखो कि दूसरे की
जी
माँ की सेवा कर रहे हैं, चाहे जैसे कर रहे हैं। एनजीओ चला के चाहे जैसे ही करना है, आप जाकर के छोड़ दे रहे हो।
ये जो
ये बड़ा
वृद्धाश्रम बने हैं वो इसी बने हैं ना
ये
सर,
इस समय ये देश में हमारे बहुत ज्वलंत समस्या है
बहुत
कि लोग
जी
माँ को, माँ के साथ बिहेवियर बच्चों का नहीं होता जब पढ़ लिख लेते हैं तो।
वृद्धाश्रम इसीलिए इतने बन गए ना क्योंकि घर में माँ है तो फिर वहीं उनका एक ठिकाना हो जाता है, क्या किया जाए,
जी जी
इतनी गलत चीज है। मैं तो कहती हूँ कोई वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए, माँ का स्थान तो घर में सबसे ऊंचा होना ही
सबसे
चाहिए।
ऊंचा होना चाहिए, बिल्कुल सबसे ऊंचा होना चाहिए। उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, माँ को कष्ट आप मत पहुंचाइए चाहे जो।
जी बहुत अच्छी बात। और सर अपने कुछ अनुभव हमसे साझा करें, कोरोना का
बस
तो इस बार
अनुभव,
ज्यादा डर बैठ गया मन में कि मतलब एकदम से क्या कहा जाए, इस बार इतना ज्यादा उसका प्रलयंकारी रूप आया हमारे सामने कि लगता ही नहीं था कि हम इस दुनिया में हैं।
मैं तो अब थर्ड वे में बच्चों की बात आई तो उसकी अभी से जागरूकता शुरू कर दिया। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा वहां पे, मैं राजेंद्र नगर में गया था,
जी
एक अनाथालय में बच्चे रहते हैं, उनको बिस्किट्स और मार्क्स दे के आया और बता के आया भाई बच्चों को लगा कर प्रैक्टिस कराइए। अब इनसे मतलब हमें इस चीज को अपना ही डर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो कुछ होगा जब ऊपर वाला के हाथ में है तो ऊपर वाला ही सब कुछ करेगा।
बिल्कुल सर,
हाँ आज तक कहीं बीमार नहीं पड़े, 2 साल हो गया, यही क्या काम है।
सर ये सर आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, बीमार क्यों आप होंगे, आप हो जाएंगे तो फिर इतने सारे लोगों का कौन करेगा,
हाँ
लोगों की
लेकिन
दुआएं
दुख होता है,
आप
दुख
जी।
होता है कभी कभी लोग उड़ा देते हैं कि ये हो गए, ये बीमार पड़ गए, ये हो गए। हमने तो हमेशा जांच भी 1-1 महीना 2-2 महीने कराता रहता हूँ, निगेटिव रिपोर्ट आती है
जी सर हम
उसको
लोगों
भी।
को बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी आपके स्वास्थ्य की, अब आपने चर्चा छेड़ी है तो मैं कहूंगी, लेकिन जानकर कि आपको मतलब आप एकदम स्वस्थ थे तो एकदम अचंभा भी हुआ और यही लगा कि कैसे लोग इस तरह।
अरे बहुत लोग चंदन हॉस्पिटल में पहुंच गए थे मुझे देखने, लेकिन मैं कहीं जब मैं बीमार हूं तब देखो ना, तीन बहुत कॉल आए
बिल्कुल
घर में
सर,
और किसी ने शरारत कर दिया था। लेकिन ये कहिए कि मेरे और जांच की रिपोर्ट मैंने फिर सबको भेजना पड़ा, मैं भेजा सबको अपने लोगों को,
नहीं,
तो ये
आपसे
सब
बात
होता
करके
रहता
हम लोग भी चिंतित हो गए थे, लेकिन आपसे बात करके फिर जब आपने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तब जाकर, और वो भी
है।
सुनकर नहीं आया,
देखिए
आपसे जब बात तब चैन आया।
वो मैंने 27 मार्च को लगवाया था कोरोना वैक्सीन, वैक्सीन कोरोना
जी
वाली
जी
पी जो लगती है
जी जी
कोविशील्ड, तो उसपे मुझे बुखार हो गया था। वो सभी को होता, स्वाभाविक वही बुखार हो गया था, बस वो भी 2-3 दिन का, कोई ज्यादा थोड़ा है। तो वो पैरासीटामोल से ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने जांच सब करा ली थी, हमने कहा करा लेना चाहिए। जी
अब आप ये देखें ना कि हम कुछ कर नहीं जब पाते हैं तो फिर जो करता है उसके लिए हम इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, जबकि करनी नहीं चाहिए, हम नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को तो करने दें कम से कम सर।
नहीं, अपनी अपनी सोच होती है, सोच सोच
जी
शब्द जो है आदमी को बहुत जग ऊपर पहुंचा देता है, बहुत नीचे पहुंचा देता
बहुत
है और बहुत
जी
कुछ कर। सोच उसकी कैसी है और
जी
जैसी उसकी सोच होगी वैसे उसका बिहेवियर होगा,
बिल्कुल ठीक है
ये मैंने देखा, सोच पे डिपेंड है बस। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, मैं आज तक सबकी नीतियों का विरोध करता हूं, व्यक्तिगत विरोध मेरा किसी से नहीं है। हम नीतियों का विरोध करते हैं भाई कि ये तुम्हारी नीति गलत है, इसमें सुधार करो तो कर लो, ना करो तो नहीं, सही भाई आपका काम है।
व्यक्तिगत विरोध होना भी नहीं चाहिए,
नहीं होना चाहिए किसी का
बिल्कुल
व्यक्तिगत विरोध नहीं होता होना चाहिए, और चापलूसी होना भी नहीं चाहिए। उसकी नीतियों का आप जमकर विरोध कीजिए, उससे कहिए
जी बिल्कुल, विरोध
कि ये आप
भी
गलत कर
करिए
रहे
लेकिन
हैं।
अगर कहीं हम सहमत हैं तो फिर हम उनका साथ भी दें,
जी
ये
जी
नहीं
बिल्कुल साथ
होगा
देना
विरोध
चाहिए,
के। जी बिल्कुल, विरोध के
बिल्कुल साथ
पीछे विरोध नहीं
देना।
होना चाहिए।
हमने आपने देखा होगा बहुत हमारी टीवी की है और उसको भेजते भी रहते हैं, कहीं आपने देखा कि भेदभाव हुआ हमसे?
नहीं
हमने वो
बिल्कुल
रिक्शे वालों को भी वही मार्क्स दिया तो वही भिखारी को भी दिया तो वही जाकर के मैं ऊपर लेवल पे दिया, वही जाके मैं मेडिकल कॉलेज में भी पहुंचाया, मैंने कहीं से नहीं। राजगीर को मैंने,
जी
आपने 27 मार्च को देखे, मैं परिवर्तन चौक पे वो लोग कोई मास्क नहीं लगाए थे, इनकी क्या कहते हैं दारू की दुकान थी, वहां भी दुकान पे भी जाकर के हमने दिया
जी
और वो न्यूज में भी आया, पुलिस वालों को दिया, क्योंकि पुलिस वाले तो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं भाई। उनका उनका कौन पूछने वाला था, वो तो 10-10 घंटा 8-8 घंटा ड्यूटी, कोरोना में तो उनको छुट्टी ही नहीं मिली। जी
जी डॉक्टर्स हमारे और पुलिस वाले इन लोगों ने भी बहुत किया, खासकर इस दूसरी लहर में तो बहुत किया गया सर। और
हाँ,
लेकिन ठीक है,
दूसरी
बहुत
में
सारे लोग भी हमसे
दूसरी
अलग
में
हुए
किया। जी
कोरोना
जी
से।
मैं तो गली गली गया हूँ, मुझे तो दूसरी लहर का भी पता है। कोई निकल
जी
ही नहीं रहा था, लेकिन भूख में लोग निकल रहे थे, बस झोपड़पट्टी में यही सब जाते थे, बाकी तो कहीं कोई निकलते नहीं था। जब फोन करते थे तो वहां पहुंचते थे भाई, वो कहीं करना तो था ही,
तो सर
स्वाभाविक था।
दूसरी लहर में तो ये हाल था कि घर के बाहर अगर गेट के बाहर देखो तो जैसे कोई मातम छाया हो, इस तरह से लगता था, देखा नहीं जाता था,
नहीं नहीं मैं
परिंदे।
तो दूसरी लहर में मैं एक दिन सोचा ना निकलूं, लेकिन मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, या तो ऊपर वाले की वजह से इतना डिस्टर्ब हो गया कि मुझे कुछ लगे अच्छे नहीं लग रहा था। फिर मैं अपने आप को नहीं संभाल पाया, फिर हमने घर में बनवाया पैकेट, और ये जाके हमने कहा, हम फोन किया, हमने कहा हम अभी आ रहे हैं आपको दे रहे हैं, ज्यादा तो नहीं लेकिन 50-60 पैकेट मैं ला के दे रहा हूँ, बाकी तो मेरा जो होटल वाला बनाता है उसे कह देंगे, घर पे बना लेंगे। हम रुक ही नहीं पाए, सही बता रहे हैं।
बताइए, का भी पूरा सहयोग है सर आप।
मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि मैं भी इंसान हूँ,
जी
मैं नहीं निकलना चाहता था दूसरी में। 27 को अलर्ट करने उसके बाद कह दिया था, नहीं निकलना चाहता था, लेकिन जब फोन आए तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। रात में 6-7 बजे जा करके कुछ जगह जहां से आया था वहां जाके मैं खाने का पैकेट किया घर से
जी
बनवा के।
जी सर,
आप
बिल्कुल
समझिए, ऐसा नहीं कि डर नहीं था, डर मुझे भी था, लेकिन मैंने कहा, लेकिन जब बैठ ही नहीं पाए तो हम क्या करें, घर में बैठ ही नहीं पाए तो क्या करते, कोई
आपने
भी हो
तो
आप भी
डर के
आप
डर के आगे जीत है।
जी। तो वही उसी दिन से मैंने सेकंड में रोज शुरू कर दिया। हमने कहा कुछ नहीं, जब ऊपर वाला ही सब करा रहा है तो ऊपर वाला ही सब कराएगा। हाँ,
जी
उसमें कौन
सर,
सी बात है, आ
घर
गई
से
तो कोई
निकलने पे थोड़ा सा वो
रोक
काफी।
नहीं पाएगा, और
जी
नहीं होगी तो कोई मार नहीं पाएगा, बस
बिल्कुल ठीक सर,
जी। और फिर मेरी तो यही थिंकिंग है कि है पूर्ण जिन्हें विश्वास, उन्हें फिर चिंता क्या साधन की।
वाह बहुत
जी,
ठीक सर।
जिसको अपने आप पे पूरा विश्वास हो और ऊपर वाले पे हो, उसको साधन की चिंता करनी नहीं चाहिए, अपने आप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये तो जो सोच के करते हैं और जिनको कुछ चाहिए होता है उसके परिणाम में, वो लोग उनको साधन ढूंढने की जरूरत होती है, आप जैसों को नहीं, ये
कुछ
बात
नहीं,
तो
साधन वाधन की कोई जरूरत नहीं है, पूर्ण जिन्हें विश्वास उन्हें फिर चिंता क्या साधन की।
जी
वो साधन वो तो अपने आप हो जाएगा। आप जब सोचेंगे अच्छी चीज सोचेंगे कि मुझे मानव सेवा करनी, तो भगवान कहीं ना कहीं से आपको क्लाइंट भेजता ही रहता है। यही तो मेरे साथ हो रहा है, और क्या हो रहा है, और कहाँ से हम पैसे ला रहे हैं, हमें क्लाइंट दे रहा है, हम वो फीस दे रहा है हमको, यही सब इसी में खर्च कर रहे हैं, नहीं रख रहे हैं अपने पास।
जी
अभी कल ही परसों ही ये कह रहे थे, आप तो महान है भाई, कोई इस पीरियड में कोई 10 किलो 5 किलो आटा नहीं दे सकता है, आपकी तो पैकेट 15 दिन 4 आदमी खा सकता है। हमने कहा हाँ, आपको मैं
जी
बताऊं, उसमें कोई चीज ऐसा नहीं रहता था कि जो खरीदना पड़े, नमक से लेके मसाला तक, तेल तक, चावल तक, आटा तक, चाय पत्ती तक, चीनी तक, सिर्फ माचिस नहीं रखता था, बाकी सब चीज रख रखता
जी सर, आपने पैकेट भी बांटे यहाँ पे, बिल्कुल
जी। पैकेट खूब बांटे हैं, पैकेट में बता रहे हैं कि माचिस मैं नहीं रखता था, बाकी सब रखता था। 5 किलो आटा होता था, दो
कारण था सर।
नहीं उसमें 5 किलो आटा होता था, 2 किलो चावल होता था, 1 किलो दाल होती थी, 1 किलो चीनी होती थी, चाय पत्ती होती थी, मसाला होता था, एक तेल की जो है वो बोतल, एक वो
जी
होता था, मतलब कुछ भी जो खाने में आप जाओ और अपने किचन में बना लो, कुछ भी आपको नहीं मतलब लेना पड़ेगा उसमें, इतनी चीज रहती थी। मसाला
जी
पैकेट तक भी मैं रख देता था, माचिस छोड़ के, बस
तो माचिस क्यों नहीं रखते
माचिस सही रखते थे कि टूट जाएगा उसमें उसका
थे?
और बेकार हो जाएगी, माचिस नहीं रखता,
नहीं
आग लगाने का काम नहीं करते
तो
थे
मैं भी यही सोच रही थी। खैर,
जी
ये तो मजाक
जी
की बात हुई, लेकिन वास्तव में आपने उनसे कितने घरों का अनाज पानी, जो आप ये समझे कि 15 दिन का उनका खान पान चला और
सब
कुछ।
सब ऊपर वाले ने करा, ऐसा नहीं है। इस बार तो लोग दो दो बार तीन तीन बार लिए हैं, क्या
अच्छा
करें भाई, उनके पास है ही नहीं, साधन ही नहीं है, तो कुछ कमा ही नहीं पा रहे थे तो क्या करते भाई। जब फोन आ जाता था तो देने पड़ता था।
लोगों की गई ना सर, अच्छे अच्छे लोगों की गई, फिर ये जो घरों में काम करते थे गई, मजदूरों की गई,
हाँ
किसी ने
बहुत
काम लगाना ही
बहुत
बंद कर दिया घर में, ये
बहुत बहुत
प्लम्बर और इस तरह के सब
नहीं,
जितने भी।
हमारे हमारे पास जितने साधन थे, जितना मैं कर सकता था उतना मैं किया, लेकिन ये चीज था कि आह्वान मैं जरूर करता रहा कि भाई आप लोग करो, निकलो मत घर से, लेकिन अपने पड़ोसी में देखो तो वो चीज आप करो। और ये मैं
जी
फिर पुनः कहता हूं कि अगर कोई आदमी कहता है भाई आप पैसा भीख मांगता है, उसको भीख मत दीजिए, लेकिन अगर वो ये कहता है मैं भूखा हूं, तो आप गाड़ी रोक करके या जैसे भी है उसको बगल में, आप तो हर जगह आपको छोटे छोटे ठेले और ये सब मिल जाता है, वहां उसको आप खिला दीजिए, बिस्कुट खिला दीजिए, चाय पिला दीजिए, अगर समोसा वहां समोसा खिला दीजिए, नहीं चार पूड़ी खिला दीजिए, इससे कोई मतलब है नहीं, उसके पेट में गया आपको शांति मिलेगी बस।
बिल्कुल ठीक कह रहे
लेकिन
हैं।
ये सोच आपकी होनी चाहिए, सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए, और वो निष्काम निस्वार्थ होना चाहिए। ये नहीं कि उसको हम खिला रहे हैं तो उसको प्रोपोगंडा कर रहे हो, कुछ नहीं। वो तो अगर आप ऐसा प्रक्रिया शुरू करोगे, एक ना एक दिन पब्लिक हमारी, मैं तो खुद कार से निकलता हूँ कोरोना में, कोई हम कैमरा लेके थोड़े जाता हूँ, लोग पब्लिक फोटो खींच करके हमको डाल देते हैं, हम उस उठा करके अपने फेसबुक पे डाल देते हैं, और इतना। और ये किसी को अगर बुरा लगता है तो लगने दीजिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है सुरिंदर मुन की यही रीति, और स्वार्थ लग करे सब प्रीति। तो हमारा तो उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं या जो करके दिखा रहे हैं कि मतलब पब्लिसिटी, पब्लिसिटी नहीं है, मैं जागरूक कर रहा हूँ, मेरी थिंकिंग थी वही, मैंने कहा ना कि सोच, मैं बार बार सोच कह रहा हूँ कि अपनी अपनी सोच, मेरी ये सोच है कि कितना इसको मैं हाईलाइट कर दूं, इस अपने काम को कितना हाईलाइट कर दूं कि लोगों के अंदर यह आए। कई हमारे पास हमारे वकील भाई हैं, कई अधिकारी हैं, उनका फोन आया कि हम लोग अपने बच्चों को उदाहरण देते हैं आपका, और हमारे बच्चे अब खुद ही बांटना शुरू कर दिए। हमने कहा
जी
यही तो मेरा उद्देश्य है टीवी में बोलना और ये और फेसबुक में डालना और हर चीज। आपने देखे होंगे मेरे फेसबुक में या टीवी में, कोई हमने ये नहीं कहा कि मैं किया हूं, क्योंकि तो मैं जहां आया ना वहां सब बेकार हो जाता है। हमने हर
जी
जगह यही कहा हनुमान जी महाराज की कृपा से किया हूँ, वही कराए हैं, मैं एक माध्यम हूँ, वही कराए हैं, मैं एक माध्यम हूँ। आपके इंटरव्यू में मैंने यही कहा था, आज मैं फिर यही कहा।
जी सर
जी
वो तो है ही, हमसे ऐसे ऐसे कार्य जो हो जाते हैं वो कोई शक्ति ही होती है जो हमसे कराती है सर। और
बस
ये जो आप कह रहे हैं कि आपको लोग कहते हैं कि प्रचार कर रहे हैं या अपना नाम पाने के लिए, तो देखिए सर कोई भी कार्य किया जाता है तो वो यश के लिए तो हम करते ही हैं, उसके पीछे एक ये उद्देश्य तो एक प्रयोजन होता है कि हम यश के लिए कुछ करें, लेकिन उसके साथ एक ये चीज होती है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उससे आगे हम आगे आने वाले लोग जो है वो उससे एक प्रेरणा प्राप्त करें। तो अगर
नहीं
आप
नहीं
करेंगे और किसी को बताएंगे ही नहीं और कोई जान नहीं पाएगा, जैसे हम जान रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपको अपने कार्यक्रम में बुलाया, किस लिए बुलाया कि मैं तो आपके बारे में सब जान रही थी लेकिन मुझे लगा मेरे श्रोता जो हैं वो जाने कि हाँ आप किस तरह कर रहे हैं। तो आपकी सोच से अगर दो चार लोगों की भी सोच को हमारा कार्यक्रम बदल पाएगा तो इसमें मैं बहुत बड़ी बात समझूंगी।
प्रेरणा
अब जैसे
प्रेरणा
कोई के प्रचार के लिए आप कर रहे हैं तो इसको मैं गलत चीज मानूंगी,
नहीं, ये
क्योंकि हम बताएंगे नहीं तो कैसे किसी को पता चलेगा।
भाई प्रचार तो आदमी प्रचार वाले करते हैं तो पब्लिक प्लेस पे करते हैं ना, ऐसी जगह की हाईलाइट हो, हम हमें टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम तो ये
मिले
और लोग आए पर्सा
साल
अगर तो के
और फिर हमारे
आने, और मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था पहले, लव प्रधानमंत्री
जी प्रधानमंत्री
मोदी ने कहा कि भाई आप लोग भी आइए और लोगों की सेवा कीजिए अगर सक्षम है तो। भाई सक्षम
जी
व्यक्ति को उन्होंने कहा था कि आप सेवा कीजिए जो करना है, तो अच्छी बात किया था भाई। सरकार व्यक्ति पे आधारित है, सरकार के पास कोई ये तो है नहीं
बिल्कुल
कि ना कि पैसा कहीं विदेश से आता है, हमारा ही टैक्स जाता है, तो संसाधन उनके भी है, उस हिसाब से चल रहा है। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि महामारी, मतलब ऐसी महामारी तो हम लोगों ने देखा नहीं था, आप सुनने में आता कि 100 साल पहले था, तो इसमें तो हमारा सबका
बिल्कुल
पुनीत कर्तव्य है कि इसमें जो है सरकार के आह्वान पे या जो प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया, तो उसमें हमारी जितनी है श्रद्धा के हिसाब से ईमानदारी से करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए लोगों को, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से नहीं होनी चाहिए।
जी,
जी
और आपको जानकर कि आप कर रहे हैं तो कितने लोग उससे प्रेरणा पा रहे हैं, और अगर आपका ना पता चले तो हम ये सोचते हैं ना कि अगर आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, अगर आप 50 लोगों को खिला सकते हैं तो हम 5 को क्यों नहीं, तो यही
नहीं,
सोच
आपकी
कंसेप्ट
शुरू
कर
किया,
लेंगे।
आपकी आपकी कोई नहीं निकल रहा था, हमसे तमाम मीडिया वालों ने बताया कि शुक्ला जी जब आप शुरू किए हैं तो उससे लोगों को प्रेरणा मिली है, बाहर तो नहीं निकले लेकिन अपने मोहल्ले में पूछते जरूर थे, भैया किसी कोई परेशानी हो तो बता देना कोई, तो हमें ये खुशी हुई, तो लोग बढ़िया है कम से कम ये हुआ।
चलिए,
और
आपकी अपील का इतना असर तो हुआ।
जी, बाकी तो हम जितना कर रहे हैं वो ईमानदारी से वहां चित्रगुप्त जी लिख ही रहे हैं,
जी सर, वो तो लेखा जोखा है ये वहां पर।
हाँ उसमें तो कोई
जी
मिलावट नहीं है, बस खत्म बात। लोग
जी
क्या है, समाज तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वो जीवित भी नहीं रह सकता, तो समाज तो आप अच्छा करोगे तब वो आपको कुछ ना कुछ कहेगा, कमी निकालेगा, और गलत करोगे तो वो तो गलत है ही, उसमें भी कमी निकालेगा, तो उसके वो तो गलत है ही, उसकी तो बातें छोड़ दी। अच्छे में भी बहुत कमी निकालते हैं लोग, ऐसा नहीं है, बहुत कमी निकालते
लेकिन
हैं।
वही कुछ
जिसकी
कर
अब
सकते जो इन चीजों की परवाह ना करे, और आपने किसी चीज को इधर उधर देखे बिना आप अपने उद्देश्य की तरफ चलते चले जा रहे हो, और यही होना भी चाहिए सर, आप किसी चीज की परवाह ना करें, जो लोग आपको सही समझते हैं तो वो समझेंगे, और बाकी ठीक है, जो लोग कुछ नहीं कर पाते उनका काम ही इस तरह की
मैं तो
बातें
ऐसे
करना।
लोगों से यही कहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, अच्छे विचार उनके अंदर दे भगवान, जो हमारी बारे में कमेंट लिखते हैं उनके लिए और सबके लिए, कि
जी
भगवान सद्बुद्धि दे उनको, और उनको उनको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।
कम कर बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा, यही चीज अपने ऊपर सोचिए आप।
नहीं, हमारी थिंकिंग है लोगों की, समाज की सेवा, अब जब तक जीवन है तब तक ये मैं करता रहूंगा, ऐसा थोड़ा है, कोरोना खत्म हुआ तो क्या हम लोगों की नहीं करेंगे, अब पर डे नहीं कर सकते हैं, हफ्ते में 10 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, या कोई तो इतना तो एक दो आदमी का तो रोज खाना दे ही सकते हैं।
अब यही प्रार्थना है कि कोरोना के लिए अब आपको ना करना पड़े, अब ये तो खत्म हो जाए।
अरे हम भी यही चाहते हैं, कोरोना कर पड़ता। और एक चीज बताएं, मेरी
जी
वाइफ भी बहुत धार्मिक है, वो डेली दोनों टाइम गाय को खाना खिलाती है, आप
अच्छा
समझ लीजिए,
जी
जबकि
सर,
उस गाय का ना हमको दूध मिलना है मोहल्ले में और ना उसका मुझे कुछ मिलना है, लेकिन जितना होता है ये घर का जो सब्जी हरी है या जो भी किया गया वो किनारे गाय के रख देते हैं, 4-5 गाय आकर के उसको खाती हैं, खाना थोड़ा हम कह देते हैं एक्स्ट्रा बना दो, ताजा खाना दो गौ माता को, वो भी खा लें, जैसे हम लोग खाते हैं वो भी खा लें। अब वो दूध किसी, अब भाई आप ये देखिए कि पेड़ से तुलना कीजिए ना, पेड़ फल देता है लेकिन वो खाता थोड़ा है, छाव
जी
छाव देता है लेकिन छाव उसको थोड़े मिलती है, तो ठीक
बिल्कुल
है, अब वो गाय भूखी है, अब वो दूध देती है, अब जिसकी है उसको देगी, वो पिए, लेकिन हमारे दरवाजा पा गई तो भूखी ना जाए भाई।
बिल्कुल,
अब जी
बहुत अच्छे भाव, आप इसीलिए इतना कर पा रहे हैं, आपको परिवार का भी पूरा सहयोग है।
पूरा पूरा पूरा,
जी
आपने तो परसाल देखा होगा वीडियो में कितना घर में खाना बनता था पूरा।
बिल्कुल
अभी हमने वाइफ से कह दें कि कल हम वहां से नहीं लेंगे पैकेट, आप दे दीजिए, ये सुबह 12 बजे तक 250-300 पैकेट बना के दे देंगी अपनी सहेलियों बुला के। हाँ
जी बिल्कुल, पिछली
अब
बार भी आप लोगों ने किया था ऐसे ही।
हाँ, पिछली बार कहाँ से कुछ मिलता, घरे तो बनता है, अब
बिल्कुल
की बार भी एक दिन हमने घरे में बनवा के दिया था, जब बताया नहीं कि वो घटना हुई थी तब,
जी,
तो हाँ के बाद वो कर दिया। यही सब चीजें हैं, राशन वाले क्या है, जब हमें की जरूरत होती है लिस्ट लिख लेते हैं तो उसको फोन कर देते हैं, भाई इतनी पैकेट तैयार करना, मैं आके ले लूंगा, खत्म बात।
आप करेंगे आपको 100 हाथ मिल जाएंगे करने वाले सर, दुनिया में ना करने वाले लोग भी हैं लेकिन करने वाले भी, ठीक है आप जितना नहीं कोई करेगा लेकिन आपका हाथ पटाने को आपको 100 हाथ मिलेंगे।
नहीं, हमारे पास कई लोगों के फोन आए कि शुक्ला जी हम भी करना चाहते हैं, हम दे दें, आप कर दो। मैंने यही कहा, भैया देखिए, 2 हाथ 2 पैर भगवान आपको दिए हैं, वही हम भी दिए हैं, आप अपना हिसाब से अपने मोहल्ले में सेवा करो, हमें मत दो, अभी हम सक्षम हैं ऊपर वाले की कृपा से, हम आपका लेकर के बांट नहीं पाएंगे, आप सिर्फ सच्चे दिल से मानव की सेवा करो, ऊपर वाला खुद ही स्क्रिप्ट आपके परिवार की वो लिख देगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे
जी,
वो खुद आपके परिवार को आगे बढ़ा देगा, बस सबकी दुआएं
बिल्कुल
व्यर्थ नहीं जाती।
इतने लोगों की दुआएं आपको लग रही हैं सर, कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, और आप ऐसे ही लगे रहें। अब कोरोना का तो खैर अब खत्म हो और इसके लिए आपको ना करना पड़े, ये हमारी ईश्वर से कामना है, लेकिन आप वैसे अपने जिस जज्बे के साथ, जिस जुनून के साथ आप लगे हैं, इसी तरह आप समाज सेवा करते रहे, यही हम चाहेंगे।
जी
और
जी नहीं
जब
बीमार तो कोई ना पड़े, मैं खुद जानता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तो हमारे देश की संस्कृति है कि हम
जी
पूरे विश्व को चाहते हैं कि सुखी रहे।
बिल्कुल
जी
जी सर, बहुत बहुत आपका आभार सर, आप आए हमारे कार्यक्रम में, और फिर हम चाहेंगे कि जब भी आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है हमेशा, और हम भी जब जरूरत समझेंगे तो आपको बुलाएंगे अपने कार्यक्रम में, अपने श्रोताओं से आपकी बातचीत करवाएंगे। तो सर बहुत बहुत आपका
जी 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 जी
प्रणाम
जी 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 धन्यवाद, नमस्कार।